अध्याय 18 प्रतिदर्शन सैंपलिंग। प्रतिदर्शन के अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। व्यवहार परक शोध चाहे प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक हो, उसमें एक जीव संख्या से चुने गए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के आधार पर शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुँचता है। जीव संख्या, या जिसे समष्टि भी कहा जाता है, से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है। जैसे सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह अभियंताओं का समूह, सभी डॉक्टरों का समूह आदि जीव संख्या के कुछ उदाहरण हैं। उसी ढंग से पुस्तकालय में किताबों की संख्या एक जीव संख्या का उदाहरण होगा। जीव संख्या पॉपुलेशन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित जीव संख्या फाइनाइट पॉपुलेशन तथा दो अपरिमित जीव संख्या इनफाइनाइट पॉपुलेशन। परिमित जीव संख्या वैसे जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है। सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह एक परिमित जीव संख्या का उदाहरण है, पर नदी में मछलियों की संख्या एक अपरिमित जीव संख्या का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोधों में परिमित जीव संख्या का ही उपयोग किया जाता है। ठीक उसी ढंग से कुछ लोगों ने कहा है कि जीव संख्या को वास्तविक या कल्पनात्मक जैसी श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। वास्तविक जीव संख्या से तात्पर्य वैसे जीव संख्या से होता है जिसका अस्तित्व वास्तव में होता है, तथा काल्पनिक जीव संख्या से तात्पर्य वैसे जीव संख्या से होता है जिसका अस्तित्व काल्पनिक होता है। पुस्तकालय में किताबों की संपूर्ण संख्या एक काल्पनिक जीव संख्या का उदाहरण है। पूरे जीव संख्या के अध्ययन से प्राप्त मान वैल्यू को प्राचल पैरामीटर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। शोधकर्ता अपने शोध के लिए जीव संख्या पॉपुलेशन से निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों या वस्तुओं का चयन सिलेक्शन कर लेता है। इस चयनित संख्या सिलेक्टेड नंबर को ही व्यवहार परक शोध बिहेवियरल रिसर्च में प्रतिदर्श सैंपल कहा जाता है, तथा प्रतिदर्श चयन करने की विधि को प्रतिदर्शन सैंपलिंग कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई शोधकर्ता किसी विश्वविद्यालय के 10,000 छात्रों में से 1,000 छात्रों को या 100 छात्रों को अपने शोध में सम्मिलित करने के उद्देश्य से चयन कर लेता है, तो यह 1,000 या 100 छात्रों का चुना हुआ समूह प्रतिदर्श सैंपल कहलाएगा, तथा 10,000 छात्रों की संख्या जीव संख्या कहलाएगा। इस प्रक्रिया को प्रतिदर्शन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। करलिंगर 1986 ने प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है, किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है। अनकोट। इस परिभाषा से प्रतिदर्श की निम्नांकित विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। एक, प्रतिदर्श एक निश्चित संख्या में जीव संख्या पॉपुलेशन से चयन किया गया सदस्यों का एक समूह होता है। दो, प्रतिदर्श में प्रतिनिधि का गुण होता है। दूसरे शब्दों में प्रतिदर्श अर्थात चुने गए व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ऐसी होती जो पूरे जीव संख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, यानी वह उन सभी प्रमुख गुणों को दिखलाता है जो जीव संख्या में होता है। प्रतिदर्श प्रतिनिधि हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका चयन पूर्वग्रह से स्वतंत्र हो। प्रतिदर्श को प्रतिनिधि होने के लिए यह भी आवश्यक है कि जीव संख्या समष्टि अच्छी तरह से परिभाषित हो। पैराग्राफ चेंज। एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि बिहार के शिक्षकों के कार्य की संतुष्टि जॉब सेटिस्फैक्शन पर उनके वेतन वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए शोधकर्ता सबसे पहले शिक्षकों के जीव संख्या को परिभाषित करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वह शिक्षकों की जीव संख्या को मात्र विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षक के रूप में परिभाषित करता है। अब वह बिहार के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को शिक्षकों की संपूर्ण संख्या ज्ञात करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह संख्या 10,000 आती है। अब वह इस 10,000 शिक्षकों की जीव संख्या से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली यदि अपने अध्ययन के लिए 1500 शिक्षकों का चयन कर लेता है तो यह एक प्रतिदर्श का उदाहरण होगा, और चूंकि चयन यादृच्छिक ढंग से किया गया है अतः यह अवश्य ही एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होगा। प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त मान को सांख्यिकी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, प्रतिदर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। व्यवहार परक शोधों, बिहेवियरल रिसर्चर्स में प्रयुक्त होने वाले प्रतिदर्शन सैम्पलिंग को मूलतः दो विस्तृत भागों में बांटा जाता है, अ संभाविता प्रतिदर्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तथा ब असंभाविता प्रतिदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दोनों तरह के प्रतिदर्शनों परियोजनाओं सैम्पलिंग प्लान का वर्णन निम्नांकित है, अ संभाविता प्रतिदर्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संभाविता प्रतिदर्शन वैसे प्रतिदर्शन परियोजना सैम्पलिंग प्लान को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों का प्रतिदर्श सैंपल में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। आदर्शतः आइडियली संभाविता प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को निम्नांकित शर्तों से संतुष्ट होना आवश्यक है, एक जीव संख्या पॉपुलेशन या समष्टि यूनिवर्स जिससे प्रतिदर्श सैंपल का चयन किया जाने वाला है उसका आकार साइज अवश्य ही ज्ञात हो, दो प्रतिदर्श की वांछित संख्या निर्दिष्ट हो तथा तीन जीव संख्या पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर हो या कम से कम अवश्य ही शोधकर्ता को ज्ञात हो। पैराग्राफ चेंज, इन तीन शर्तों में से पहली और तीसरी शर्त कुछ ऐसी है कि शोधकर्ता उसे ठीक ढंग से कभी कभी पूरा करने में असमर्थ भी रहता है, फिर भी संभाविता प्रतिदर्शन का एक धनात्मक गुण पॉजिटिव फीचर यह है कि इसे प्राप्त होने वाले प्रतिदर्श प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फलस्वरूप इनसे मिलने वाले निष्कर्ष कंक्लूजन को काफ़ी विश्वास के साथ उस जीव संख्या जिससे प्रतिदर्श का चयन किया गया था तथा उस तरह के समान जीव संख्या सिमिलर पॉपुलेशन पर लागू किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, संभाविता प्रतिदर्श प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के निम्नांकित तीन प्रमुख प्रकार हैं, एक साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दो अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीन क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। इन तीनों का वर्णन आगे के अनुच्छेदों सेक्शंस में किया गया है। ब असंभाविता प्रतिदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। असंभाविता प्रतिदर्शन वैसी प्रतिदर्शन परियोजना सैम्पलिंग प्लान है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। इसके अलावा इस तरह के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता जीव संख्या को स्पष्ट पहचान करने की चिंता नहीं करता है और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्शन में शामिल कर लेता है। पैराग्राफ चेंज, असंभाविता प्रतिदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे प्रमुख लाभ एडवांटेज यह बतलाया गया है कि इसे आसानी से एवं कम श्रम धन एवं समय में ही तैयार कर लिया जा सकता है। असंभाविता प्रतिदर्शन का सबसे प्रमुख परिसीमा लिमिटेशन यह बतलाया गया है कि इस ढंग से प्राप्त प्रतिदर्शन सैंपल अपने जीव संख्या पॉपुलेशन का सही सही प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण अपने जीव संख्या पॉपुलेशन तथा उससे मिलती जुलती जीव संख्या पॉपुलेशन के सदस्यों के लिए सही सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, असंभाविता प्रतिदर्शन के कई प्रकार टाइप हैं जिनमें कोलमैन 1958 तथा सेल्टिच एवं उनके सहयोगियों के अनुसार निम्नांकित प्रकार अधिक प्रमुख हैं, एक कोटा प्रतिदर्शन कोटा सैम्पलिंग, दो प्रासंगिक प्रतिदर्शन एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग, तीन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन परपजिव सैम्पलिंग, फोर क्रमबद्ध प्रतिदर्शन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पाँच हिमकंदुक प्रतिदर्शन स्नोबॉल सैम्पलिंग, छः संतृप्ति प्रतिदर्शन सैचुरेशन सैम्पलिंग तथा सात घनीभूत प्रतिदर्शन डेंस सैम्पलिंग। इन सभी तरह के प्रतिदर्शों का मनोवैज्ञानिक शोध में उदाहरण सहित वर्णन एवं उनके गुण दोषों की व्याख्या अलग अलग अनुच्छेदों सेक्शंस में आगे की गई है। पैराग्राफ चेंज, प्रतिदर्शन करते समय ध्यान रखने वाले कारक फैक्टर्स टू बी केप्ट इन व्यू ड्यूरिंग सैम्पलिंग। जब कोई शोधकर्ता यह निर्णय करने की स्थिति में आ जाता है कि वह अपने अध्ययन के लिए एक प्रतिदर्श सैंपल का चयन करेगा तो उसे उस समय कुछ खास खास बातों का ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इन बातों में निम्नांकित तीन बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं, एक जीव संख्या का आकार साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर जीव संख्या पॉपुलेशन का आकार छोटा है, जैसे मान लिया जाए कि मात्र इसमें 200 या 300 सदस्य ही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः यह देखा गया है कि शोधकर्ता सभी सदस्यों को अपने अध्ययन में शामिल कर लेता है और जब प्रतिदर्शन सैंपलिंग का प्रश्न उठता ही नहीं, परंतु यदि जीव संख्या का आकार साइज बड़ा है, जैसे उसके सदस्यों की संख्या 10,000 है या इससे भी अधिक है, तो शोधकर्ता उसे अपने अध्ययन के लिए एक उपयुक्त अप्रोप्रिएट आकार का प्रतिदर्श का चयन करना आवश्यक समझता है। अतः जीव संख्या का आकार बड़ा होने से ही प्रतिदर्शन सैंपलिंग करने की बात उत्पन्न होती है। सामान्यतः जीव संख्या पॉपुलेशन का आकार जितना बड़ा होता है, प्रतिदर्शन की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज दो, प्रतिदर्शन की कीमत, कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्शन किया जाए या नहीं, या फिर यदि किया जाए तो प्रतिदर्श में कितने सदस्य होंगे, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन सभी प्रक्रियाओं की लागत क्या आएगी और वह शोधकर्ता के बजट के अनुरूप है या नहीं। यदि है तब तो समस्या उतनी गंभीर नहीं होती और प्रतिदर्शन आसानी से कर लिया जाता है, परंतु यदि नहीं है तो शोधकर्ता को उसी के अनुसार प्रतिदर्शन परियोजना सैंपलिंग प्लान में परिवर्तन करना पड़ता है। तीन, जीव संख्या के सदस्यों की प्राप्यता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। प्रतिदर्शन सैंपलिंग करते समय तीसरी बात जो ध्यान में रखना आवश्यक है वह यह है कि जीव संख्या के सदस्यों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उन्हें आसानी से प्राप्त हो। यदि वे शोधकर्ता के लिए दुर्लभ हैं तो वैसी परिस्थिति में उन्हें प्रतिदर्श में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और तब शोधकर्ता को अपनी विशेष परियोजना प्लानिंग में परिवर्तन करना पड़ता है। स्पष्ट है कि प्रतिदर्शन सैंपलिंग करते समय यदि उपयुक्त बातों को ध्यान में रखा जाए तो इससे प्रतिदर्शन का स्वरूप अधिक शोधनीय रिसर्चेबल होगा। पैराग्राफ चेंज, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन संभाव्यता प्रतिदर्शन का एक प्रमुख प्रकार है। यह वैसे प्रतिदर्शन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, तथा साथ ही साथ किसी एक सदस्य का चयन सिलेक्शन दूसरे सदस्य के चयन पर आधारित न होकर स्वतंत्र होता है। गिलफोर्ड 1956 ने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की एक उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है जो इस प्रकार है, कोट, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की सबसे उत्तम परिभाषा यह है कि यह जीव संख्या से व्यक्तियों को चुनने का एक ऐसा ढंग है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। किसी एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरह से अन्य दूसरे व्यक्ति के चयन से जुड़ा या उस पर निर्भर नहीं होता है, अनकोट। पैराग्राफ चेंज, इस परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की मुख्य दो विशेषताएं हैं जो निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज, एक, समान संभावना, इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने या उनका चयन होने की संभावना बराबर बराबर होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कक्षा के 60 छात्रों में से 10 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया जाता है तो इसमें प्रत्येक छात्र को चुने जाने की संभावना सैद्धांतिक रूप से 1/60 है। पैराग्राफ चेंज दो, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के किसी भी एक सदस्य का चयन न तो दूसरे सदस्य के चयन से प्रभावित होता है और न ही दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में किसी भी सदस्य का चयन किसी दूसरे सदस्य के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। पैराग्राफ चेंज, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में उपयुक्त दोनों गुणों को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि जीव संख्या के व्यक्तियों का चयन करते समय कुछ खास खास विधियों का उपयोग किया जाए। इन विधियों में लॉटरी प्रविधि, लॉटरी टेक्निक, यादृच्छिक संख्या के टेबल, टेबल ऑफ रैंडम नंबर का प्रयोग, सिक्का उछालना, कॉइन टॉसिंग, फिश बॉल ड्रॉ आदि प्रमुख हैं, क्योंकि इसमें संयोग या संभावना का नियम लॉ ऑफ चांस पूर्णतः क्रियान्वित होता है। इन विधियों में फिश बॉल ड्रॉ तथा यादृच्छिक संख्या के टेबल टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोधों में काफ़ी होता है। एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए किसी कक्षा से 15 छात्रों का साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श तैयार करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कक्षा में 60 छात्र हैं, अतः यहाँ जीव संख्या 60 छात्र का है। इस जीव संख्या से 15 छात्र को यादृच्छिक चयन के लिए मान लिया जाए कि शोधकर्ता फिश बॉल ड्रॉ करना चाहता है। इसके लिए वह सभी 60 छात्रों के नाम या क्रमांक को वह किसी कागज के समान टुकड़ा पर लिखकर उसे समान ढंग से मोड़ लेगा और किसी बॉक्स में रखकर उसे अच्छी तरह से हिला डुला लेगा। इसके बाद किसी एक व्यक्ति को आंख पर पट्टी बांधकर एक एक करके बारी बारी से 15 कागज के टुकड़ों को निकालने के लिए कहेगा। यह सामान्यतः किसी भी शोधकर्ता द्वारा दो तरह की प्रविधियों में से किसी एक प्रविधि का अनुसरण किया जाता है। एक, वापसी के साथ प्रतिदर्शन, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दो, बिना वापसी का प्रतिदर्शन, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आंख पर पट्टी बांधकर व्यक्ति बॉक्स से पहला पर्ची स्लिप निकालता है तो वह 60 पर्चियों में से किसी पर्ची को चुन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पर्ची को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर है, जो यहाँ सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली 1/60 ही होगी। इसी तरह से बारी बारी करके वो 15 पर्ची निकालेगा। वापसी के साथ प्रतिदर्शन में यह देखा गया है कि कभी कभी एक पर्ची दो बार या उससे अधिक बार निकाल लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस पर्ची पर लिखे नाम को शोधकर्ता दोबारा नहीं लिखता है और उसे नहीं निकाला गया समझकर पुनः बॉक्स में डाल दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज, ऐसा भी किया जाता है कि पहली पर्ची बॉक्स से निकालने के बाद शोधकर्ता उस पर लिखे नाम को तो लिख लेता है परंतु उस पर्ची को वह पुनः बॉक्स में नहीं डालता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरी पर्ची को निकाले जाने की संभावना 1/59 होगी, तीसरी पर्ची को निकालने जाने की संभावना 1/58 होगी और उसी तरह 15वीं पर्ची को निकालने की जाने की संभावना 1/45 होगी। इस तरह के प्रतिदर्शन को बिना वापसी का प्रतिदर्शन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, वापसी के साथ प्रतिदर्शन तथा वापसी के बिना प्रतिदर्शन में मुख्य अंतर यह है कि पहले प्रतिदर्शन में एक निश्चित आकार के प्रतिदर्श की संभावित कुल संख्या दूसरी तरह के प्रतिदर्शन में उसी आकार के प्रतिदर्शन की संभावित कुल संख्या से कहीं अधिक होती है। इस अंतर को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि जीव संख्या 4 सदस्यों का है, जिससे हमें 2 सदस्यों वाले प्रतिदर्श की संख्या निश्चित करनी है। स्पष्टतः यहाँ 2 सदस्यों वाले प्रतिदर्श की संख्या अधिकतम 6 होगी। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से 2 सदस्यों वाले प्रतिदर्श की अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। यह बिना वापसी के प्रतिदर्शन की परिस्थिति में होगा। बिना वापसी के प्रतिदर्शन में किसी जीव संख्या के ज्ञात आकार से एक निश्चित आकार के संभावित कुल प्रतिदर्श की संख्या कितनी होगी, इसे निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। (n)(n)(n-n)(n)). यहाँ कैपिटल N जीव संख्या का आकार, स्मॉल n प्रतिदर्श का आकार, एक्सक्लेमेशन फैक्टोरियल है। उपयुक्त उदाहरण में जहाँ जीव संख्या 4 है, 2 सदस्यों के प्रतिदर्श की अधिकतम संख्या होगी 6। उसी तरह से यदि किसी जीव संख्या में सदस्यों की संख्या 5 है तो उससे 2 सदस्यों के प्रतिदर्शन की अधिकतम संख्या होगी 10, परंतु उसी आकार की जीव संख्या से 4 सदस्यों के प्रतिदर्श की अधिकतम संख्या होगी 5। परंतु यदि शोधकर्ता वापसी के साथ प्रतिदर्शन करता है तो ऐसी परिस्थिति में 2 सदस्यों वाले प्रतिदर्शन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसे निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। (n)(n), यहाँ कैपिटल N जीव संख्या का आकार, स्मॉल n प्रतिदर्शन का आकार। चूंकि उपरोक्त उदाहरण में कैपिटल N इज इक्वल टू 4 तथा स्मॉल n इज इक्वल टू 2 है, अतः इस आकार की जीव संख्या से 2 सदस्यों वाले प्रतिदर्श की अधिकतम संख्या 4 टू बी पावर 2 इंटू माफ कीजिए 4 टू बी पावर 2 इज इक्वल टू 4 × 4 इज इक्वल टू 16 होगी। दूसरे शब्दों में दो दो सदस्यों वाले अधिकतम 16 प्रतिदर्श तैयार किए जा सकते हैं जो इस प्रकार होंगे ए बी पी सी सी तथा डी डी। संयोग स्पष्टतः इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वापसी के साथ प्रतिदर्शन में जिस सदस्य को एक बार चुना जा चुका है उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। पैराग्राफ चेंज मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोधों में वापसी के साथ प्रतिदर्शन तथा बिना वापसी के प्रतिदर्शन दोनों ही का प्रयोग शोध समस्या के अनुसार किया जाता है। पैराग्राफ चेंज जब कोई प्रतिदर्श का यादृच्छिक ढंग से चयन नहीं हो पाता है तो इस तरह के प्रतिदर्श को पूर्वग्रसित प्रतिदर्श कहा जाता है और इससे प्राप्त निष्कर्ष या सामान्यीकरण अर्थपूर्ण ढंग से संभव नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन के कुछ लाभ एवं परिसीमाएं भी हैं। इसके प्रमुख लाभ या गुण इस प्रकार हैं। एक साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में चूंकि जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य का चयन होने की संभावना बराबर बराबर होती है तथा किसी भी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन से अंतर्बद्ध नहीं होता है अतः इससे प्राप्त होने वाले प्रतिदर्श को सैद्धांतिक रूप से अवश्य ही प्रतिनिधिक माना जा सकता है। दो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग चूंकि अन्य सभी तरह के संभावित प्रतिदर्शन में किया जाता है अतः यह अन्य सभी तरह के यादृच्छिक प्रतिदर्श के लिए एक ठोस आधार का काम करता है। तीन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन एक सरल एवं सुगम विधि है। इसकी प्रविधि को समझना काफ़ी आसान है फलस्वरूप इसमें श्रम एवं धन की काफ़ी बचत होती है। चार साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में शोधकर्ता जीव संख्या की संभावित विशेषताओं को जानने की चिंता से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि इस तरह के प्रतिदर्शन से उसे जीव संख्या के सभी प्रमुख गुणों की झलक अपने आप मिल जाएगी। पाँच साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच आसानी से हो जाती है। पैराग्राफ चेंज इन गुणों के बावजूद साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की कुछ परिसीमाएँ भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को जीव संख्या की विशेषताओं के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे यदि शोधकर्ता को यह पता हो सकता है कि जीव संख्या में 50% पुरुष हैं तथा 50% महिला हैं 30% स्नातक उपाधि वाले हैं तथा 70% स्नातक से नीचे की कक्षा प्राप्त योग्यता तक के हैं इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के बावजूद भी वह इन सब के अनुकूल अनुपात में व्यक्तियों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मात्र निर्दिष्ट संख्या में ही व्यक्तियों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके अपना काम समाप्त कर देना होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस ढंग से तैयार प्रतिदर्श सैद्धांतिक रूप से तो जीव संख्या का प्रतिनिधिक होता है परंतु व्यवहारिक रूप से प्रतिनिधिक नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज दो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की दूसरी परिसीमा यह बतलाई गई है कि इस दर्शन के प्रतिदर्शन परियोजना वे उन सदस्यों को सम्मिलित होने की कोई गारंटी नहीं होती जिनकी संख्या जीव संख्या में कम होती है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि जीव संख्या में 200 छात्र हैं जिनमें से 10 छात्र विकलांग हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शोधकर्ता 200 में से 20 छात्र का यादृच्छिक चयन करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में विकलांग छात्रों में से किसी एक का भी चयन नहीं हो सकता है क्योंकि जीव संख्या में ऐसे छात्रों की संख्या कम है। तीन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन संभावित प्रतिदर्शन के अन्य प्रकार जैसे अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन की तुलना में कम विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें प्रतिदर्शन त्रुटि की मात्रा अधिक होती है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि की मात्रा इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस दर्शन का प्रतिदर्श अपने जीव संख्या की सभी विशेषताओं या स्तरों का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पैराग्राफ चेंज इन सभी अवगुणों या परिसीमाओं के बावजूद साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध में सर्वाधिक होता रहा है क्योंकि इसमें सरलता एवं सुगमता जैसे गुण की प्रचुरता है। अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन वैसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की कुछ ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है जिसमें जीव संख्या की संरचना स्ट्रक्चर का पता किया जाता है। अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, असमानुपात अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ब समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन दोनों तरह के प्रतिदर्शनों की व्याख्या इस प्रकार है, असमानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन वैसी प्रतिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की कुछ खास विशेषता या स्तर का पता लगाकर प्रतिदर्श में व्यक्तियों का चयन भी उसी विशेषता या स्तर के समानुपात में करता है। जीव संख्या को जब किसी एक विशेषता के आधार पर उसे कई स्तरों में बांटा जाता है तो उसे साधारण स्तरण कहा जाता है, परंतु जब एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर उन्हें कई स्तरों में बांटा जाता है तो उसे जटिल स्तरण कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। एक उदाहरण, मान लिया जाए कि किसी विश्वविद्यालय में छात्रों की जीव संख्या को विभिन्न कक्षाओं के अनुसार चार भागों या स्तरों में बांटा जाता है, IA, BA, MA तथा PhD। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह वितरण तालिका 18 के अनुसार प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शोधकर्ता 1000 छात्रों के प्रतिदर्शन का निर्माण करने का निर्णय कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में वह पहले जीव संख्या के चारों स्तरों के अनुकूल चयन किए जाने वाले प्रतिदर्शन में भी चार स्तर तैयार करेगा और प्रत्येक स्तर में कितने व्यक्तियों का चयन किया जाएगा इसका निर्णय जीव संख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर करेगा। जैसे IA कक्षा से प्रतिदर्श में कितने व्यक्ति का चयन किया जाएगा इसका निर्णय करने के लिए वह जीव संख्या में IA कक्षा के अनुपात यानी 0.30 को 1000 से गुणा करेगा जो 300 आएगा। इसी तरह से अन्य तीनों स्तरों के लिए चुने जाने वाले प्रतिदर्श की संख्या का निर्माण किया जाएगा। IA से प्रतिदर्श की कुछ संख्या 1000 × 0.30 = 300, BA से प्रतिदर्श की कुल संख्या 1000 × 0.40 = 400, MA से प्रतिदर्श की कुल संख्या 1000 × 0.20 = 200, PhD से प्रतिदर्श की कुल संख्या 1000 × 0.10 = 100, टोटल 1000। इस तरह के कक्षावार 1000 प्रतिदर्श का समानुपाती विश्लेषण को तालिका 19 में दिखलाया जा सकता है। इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक कक्षा से व्यक्तियों को यादृच्छिक ढंग से निर्धारित संख्या में चयन करेगा। जैसे वह IA कक्षा से 300 छात्रों का, BA कक्षा से 400 छात्रों का, MA कक्षा से 200 छात्रों का तथा PhD कक्षा से 1000 छात्रों का यादृच्छिक ढंग से यानी किसी यादृच्छिक संख्या के टेबल या यादृच्छिक प्रतिदर्शन की अन्य विधियों से चयन करेगा। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट हुआ कि समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में जीव संख्या के विभिन्न स्तरों के समानुपात में प्रतिदर्श में व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है ताकि जीव संख्या के सभी प्रमुख गुणों या विशेषताओं की झलक प्रतिदर्श में आ सके। पैराग्राफ चेंज। शोध उपयोगिताएं, रिसर्च यूटिलिटी, समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग उन परिस्थितियों में सर्वाधिक उत्तम माना गया है जहां जीव संख्या में विभिन्न स्तरों का महत्व काफ़ी होता है, जैसे सैनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा आदि में व्यक्ति विभिन्न कोटियों में स्पष्ट रूप से बटे होते हैं। यदि शोध समस्या का संबंध ऐसे व्यक्तियों की जीव संख्या से होता है तो वहां समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श की उपयोगिता अधिक होती है क्योंकि यही एक ऐसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसके द्वारा इस ढंग के अस्तरित जीव संख्या का सही सही प्रतिनिधित्व हो सकता है। बेलॉक 1975 ने यह बतलाया कि समानुपाती अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन उन परिस्थितियों में सबसे अधिक उत्तम होता है जहाँ जीव संख्या में अस्पष्ट स्तर या कोटि पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के कुछ लाभ तथा दोष या परिसीमाएं हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन द्वारा चयन किया प्रतिदर्श से जीव संख्या का प्रतिनिधित्व सही सही हो पाता है, क्योंकि ऐसे प्रतिदर्शन द्वारा जीव संख्या के सभी गुणों का समानुपाती प्रतिनिधित्व हो पाता है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दो, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चूंकि जीव संख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसके आधार पर किए गए अध्ययन में सामान्यीकरण का गुण अधिक होता है। तीन, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में प्रतिदर्शन त्रुटि कम होता है, फलस्वरूप समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में निपुणता अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के कुछ दोष या परिसीमाएं भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, समानुपाती स्थित यादृच्छिक प्रतिदर्शन तैयार करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसमें उसे जीव संख्या की उन विशेषताओं का पता लगाना पड़ता है जो स्तरण का आधार बनता है। दो, इस तरह के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को प्रतिदर्शन तैयार करने में अधिक धन, श्रम एवं समय लगता है। तीन, इस तरह के प्रतिदर्शन सैम्पलिंग में वर्गीकरण त्रुटि क्लासिफिकेशन एरर्स होते पाए गए हैं। वर्गीकरण त्रुटि क्लासिफिकेशन एरर से तात्पर्य वैसी त्रुटियों से होता है जिसके कारण शोधकर्ता जीव संख्या के सदस्यों को उस स्तर में वर्गीकृत कर देता है जिसमें वह नहीं है। इस ढंग की त्रुटि उन परिस्थितियों में अधिक देखने को मिलती है जब जीव संख्या के विभिन्न निर्धारित स्तर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ब, असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन बहुत हद तक समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के ही समान है। इसमें भी शोधकर्ता जीव संख्या को पहले कुछ ज्ञात गुणों के आधार पर कई स्तरों में बांट लेता है और फिर बाद में यादृच्छिक ढंग से रैंडमली प्रत्येक सदस्य स्तर से कुछ व्यक्तियों का चयन कर एक प्रतिदर्श तैयार कर लेता है। इस तरह के प्रतिदर्श में चुने गए व्यक्तियों की संख्या जीव संख्या के स्तर के समानुपात में नहीं होती है। इस अर्थ में असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन से भिन्न होता है। जैसे मान लिया जाए कि जीव संख्या ऐसी है जिसमें 60% पुरुष हैं तथा 40% महिला। यदि शोधकर्ता 100 व्यक्तियों का प्रतिदर्श चयन करना चाहता है और यदि वह अपने प्रतिदर्श में यादृच्छिक ढंग से रैंडमली 50 पुरुष को लेता है और 50 महिला को लेता है तो यह असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का उदाहरण होगा। परंतु यदि वह जीव संख्या के स्तर स्ट्रैटा के समानुपात में ही 60 पुरुष तथा 40 महिला का चयन यादृच्छिक ढंग से करता है तो वह समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का उदाहरण होगा। इससे असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है जो निम्नांकित है। एक, इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के ज्ञात गुणों के अनुसार कई स्तरों में बांट दिया जाता है। दो, इसमें जीव संख्या के प्रत्येक स्तर का समान भार इक्वल वेट दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जीव संख्या के प्रत्येक स्तर में व्यक्तियों को समान संख्या में चयन किया जाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में जीव संख्या को यौन के आधार पर दो भागों या स्तरों में बांटा गया है, पुरुष तथा महिला। पुरुष वर्ग से 50 व्यक्तियों को तथा महिला वर्ग से 50 व्यक्तियों का चयन किया गया है। तीन, इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के प्रत्येक स्तर से चयन यादृच्छिक ढंग से किया जाता है। चार, असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श में चूंकि जीव संख्या के सभी स्तरों के समान भार दिया जाता है, अतः कुछ स्तर से लोगों का प्रतिनिधित्व होता है तथा कुछ स्तर से लोगों का अप्रतिनिधित्व होता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में जीव संख्या में पुरुष का प्रतिशत 60% तथा महिला का प्रतिशत 40% है, परंतु 100 लोगों के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता ने 50 पुरुष को लिया है तथा 50 महिला को लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रतिदर्श में पुरुष का अनाप्रतिनिधित्व हो रहा है जबकि महिलाओं का अति प्रतिनिधित्व हो रहा है। शोध उपयोगिताएं रिसर्च यूटिलिटी अध्ययनों से पता चलता है कि असमानुपाती अस्तित्व यादृच्छिक प्रतिदर्शन की शोध उपयोगिता उन परिस्थितियों में सबसे अधिक है जहां जीव संख्या को कुछ विशेषताओं के आधार पर छोटे छोटे स्तरों में बांट दिया जाता है और उनमें से कुछ स्तर ऐसे स्तर होते हैं जिनमें व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम होती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श किया जाए तो अधिक उम्मीद यही है कि इस तरह के स्तर जहां व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम है का प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श में हो ही नहीं पाए। इसके अलावा उन सभी परिस्थितियों में असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन की उपयोगिता बतलाई गई है जिसमें समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का उपयोग किया जाता है। असमानुपाती प्रतिदर्शन में समानुपाती प्रतिदर्शन की तुलना में कम समय एवं परिश्रम लगता है, अतः शोधकर्ता के पास यदि समय नहीं होता है और वह स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का ही प्रयोग करना चाहता है तो वैसी परिस्थिति में वह समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग न कर असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ चेंज। असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के कुछ लाभ तथा दोष या परिसीमाएँ हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन की अपेक्षा कम समय लगता है क्योंकि इसमें शोधकर्ता प्रतिदर्श में व्यक्तियों का चयन समानुपाती प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर नहीं करता है। पैराग्राफ चेंज। दो, इस तरह का प्रतिदर्शन जीव संख्या के उन स्तरों को अधिक भार देने में समर्थ हो पाता है जिनमें सदस्यों की संख्या कम होती है। समानुपाती प्रतिदर्शन में इस ढंग का भार शोधकर्ता चाहकर भी नहीं दे सकता है क्योंकि उसे अपने प्रतिदर्श में जीव संख्या के प्रत्येक स्तर से समानुपाती प्रतिनिधित्व करना आवश्यक होता है। पैराग्राफ चेंज। असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के कुछ दोष भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, असमानुपाती प्रतिदर्श में जीव संख्या के प्रत्येक स्तर का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। कुछ स्तर से उनका जीव संख्या में वितरण के दृष्टिकोण से अधिक लोगों का चयन कर लिया जाता है तो कुछ स्तर से कम लोगों का ही चयन हो पाता है। नतीजतन तैयार किया गया प्रतिदर्श एक पूर्वग्रहित प्रतिदर्श हो जाता है जो जीव संख्या का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पैराग्राफ चेंज। दो, असमानुपाती प्रतिदर्शन में यह आवश्यक है कि शोधकर्ता को जीव संख्या की रचना या संगठन ज्ञात हो। अगर उसे जीव संख्या की रचना के बारे में अच्छा से ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसके लिए स्तरीकरण एक टेढ़ी खीर के समान होगी। यह दोष समानुपाती प्रतिदर्शन के दोष के समान ही है। पैराग्राफ चेंज। तीन, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन या संक्षेप में समानुपाती प्रतिदर्शन के समान ही असमानुपाती प्रतिदर्शन में वर्गीकरण त्रुटि होने की तीव्र संभावना होती है। ऐसा संभव है कि शोधकर्ता किसी जीव संख्या के किसी सदस्य को उस श्रेणी या स्तर में नहीं वर्गीकृत करे जिसमें कि वास्तव में उस सदस्य को वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इससे लिया गया प्रतिदर्श को प्रतिनिधिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पैराग्राफ चेंज। इन अवगुणों या परिसीमाओं के बावजूद असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का महत्व मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक में काफ़ी है। पैराग्राफ चेंज। क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। क्षेत्र प्रतिदर्शन या जिसे गुच्छ प्रतिदर्शन भी कहा जाता है एक ऐसी संभाव्यता प्रतिदर्शन है जिसका उद्भव कृषि शोधों में हुआ था परंतु व्यवहार परक विज्ञानों में यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसका प्रयोग सर्वे शोध में अधिक किया जाता है जहां जीव संख्या बड़ा तो होता ही है साथ ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए भी होते हैं। क्षेत्र प्रतिदर्शन में जीव संख्या की कई इकाइयों में से कुछ इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके फिर उन इकाइयों से कुछ व्यक्तियों का यादृच्छिक ढंग से चयन किया जाता है। जब इकाइयाँ काफ़ी बड़े होते हैं तो उन इकाइयों में से कुछ इकाई का और यदि ज़रूरत महसूस की गई तो इन चुने गए इकाई में से कुछ उप इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके प्रतिदर्श तैयार किया जाता है। करलिंगर 1986 ने गुच्छ प्रतिदर्शन को इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है, कोट, गुच्छ प्रतिदर्शन जिसका प्रयोग सर्वे में अधिक सर्वाधिक होता है इकाइयों या सेटों या उपसेटों का क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है, अनकोट। पैराग्राफ चेंज, एक उदाहरण। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता किसी राज्य के लोगों की राजनीतिक मनोवृत्ति का अध्ययन करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए यह तो संभव नहीं होगा वह राज्य के सभी व्यक्तियों की मनोवृत्ति का आकलन करे, अतः वह क्षेत्र प्रतिदर्शन करने का निश्चय करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि उस राज्य में 20 जिला है, अब वह 20 जिला में कुछ जिला का यादृच्छिक ढंग से चयन कर लेगा। मान लिया जाए कि वह 5 जिला को यादृच्छिक ढंग से चुन लेता है, अब वह प्रत्येक ऐसे जिले में साक्षात्कारकर्ता को भेजकर लोगों की राजनीतिक मनोवृत्ति का अध्ययन करेगा। यदि कोई जिला ऐसा है जो काफ़ी बड़ा है, जैसे मान लिया जाए कि उसमें 10 सब डिविजन हैं, तो शोधकर्ता फिर इन 10 सब डिविजन में से कुछ सब डिविजन, जैसे 4 सब डिविजन को यादृच्छिक ढंग से चुन लेगा और इन 4 सब डिविजनों के लोगों को ही राजनीतिक मनोवृत्ति का मापन करेगा। शोधकर्ता 5 जिला के लोगों के मनोवृत्ति का अध्ययन कर जो तथ्य प्राप्त करेगा उसे राज्य के सभी जिलों के लोगों के लिए सत्य माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज, स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र प्रतिदर्शन में शोधकर्ता जीव संख्या की इकाइयों या उप इकाइयों का क्रमिक ढंग से सक्सेसिवली यादृच्छिक प्रतिदर्शन करते जाता है। पैराग्राफ चेंज, शोधक उपयोगिताएं, रिसर्च यूटिलिटीज। क्षेत्र प्रतिदर्शन की कई शोध उपयोगिताएं बतलाई गई हैं। इस तरह के प्रतिदर्शन का उपयोग जनमत ज्ञात करने के लिए अक्सर किया जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि जब जीव संख्या के व्यक्तियों की सूची शोधकर्ता को किसी कारण से नहीं प्राप्त हो पाती है, तो वैसी परिस्थिति में भी क्षेत्र प्रतिदर्शन की उपयोगिता बढ़ जाती है। पिटमैन 1947 के अनुसार क्षेत्र प्रतिदर्शन का प्रयोग बड़े सर्वे तथा छोटे सर्वे दोनों में सफलतापूर्वक होता है। पैराग्राफ चेंज, क्षेत्र प्रतिदर्शन के कुछ लाभ एवं दोष या परिसीमाएं हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, क्षेत्र प्रतिदर्शन का प्रयोग बड़े जीव संख्या के अध्ययन या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन में काफ़ी लाभदायक एवं सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। इसमें शोधकर्ता को सुविधा होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ वह बड़े जीव संख्या के भौगोलिक क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों का यादृच्छिक ढंग से चयन कर मात्र उसी क्षेत्र के लोगों के विचारों का अध्ययन करता है। शोधकर्ता को प्रत्येक क्षेत्र के सभी लोगों की सूची की आवश्यकता साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन के समान यहाँ नहीं पड़ती है। दो, क्षेत्र प्रतिदर्शन में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता का यादृच्छिक ढंग से चुने गए मात्र कुछ व्यक्तियों के ही विचारों का अध्ययन करने से काम चल जाता है, अतः यह स्वाभाविक है कि उसमें कम समय, श्रम एवं धन प्रतिदर्शन की अन्य विधियों की तुलना में लगे। तीन, क्षेत्र प्रतिदर्शन में यादृच्छिक ढंग से चुने गए क्षेत्र के किसी प्रत्यर्थी का उसी क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ प्रतिस्थापन जरूरत पड़ने पर आसानी से किया जा सकता है। इस ढंग की सुविधा प्रतिदर्शन की अन्य विधियों में संभव नहीं है। चार, क्षेत्र प्रतिदर्शन में लचीलापन का गुण होता है। शोधकर्ता यदि चाहे तो प्रत्येक चुने गए क्षेत्र से व्यक्तियों को सीधे चयन कर सकता है, या फिर उस क्षेत्र को विभिन्न स्तरों में बांटकर एक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श का भी चयन कर सकता है। इस ढंग का लचीलापन संभाविता प्रतिदर्शन के अन्य विधियों में नहीं है। पाँच, क्षेत्र प्रतिदर्शन में चयन किए गए व्यक्तियों के गुच्छ की विशेषताओं को जानना आसान होता है। इन गुणों को जान लेने से एक गुच्छ से प्राप्त निष्कर्ष को दूसरे गुच्छ पर विश्वास के साथ लागू किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, क्षेत्र के प्रतिदर्शन के प्रमुख दोष या परिसीमाएं निम्नांकित हैं। एक, इस तरह के प्रतिदर्शन में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि इसमें सम्मिलित किया गया प्रत्येक गुच्छ या क्षेत्र का आकार बराबर ही होगा, क्योंकि शोधकर्ता को प्रत्येक गुच्छ के आकार पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एक गुच्छ या क्षेत्र के कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अन्य दूसरे गुच्छ या क्षेत्र में नहीं हो। इसका परिणाम यह होता है कि इस ढंग के प्रतिदर्शन विधि से तैयार किया गया प्रतिदर्श एक तरह का एक तरफा प्रतिदर्श या पूर्वग्रहित प्रतिदर्श बन जाता है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष में सामान्यीकरण के गुण का सर्वथा अभाव रहता है। दो, क्षेत्र प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि अधिक होता है, फलस्वरूप इस तरह के प्रतिदर्शन की निपुणता कम होती है। तीन, इस तरह के प्रतिदर्शन में इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि किसी एक क्षेत्र या गुच्छ में सम्मिलित व्यक्ति अन्य दूसरे गुच्छ से पूर्णतः स्वतंत्र होगा। ऐसे अक्सर देखा गया है कि आज किसी व्यक्ति का साक्षात्कार शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता द्वारा ले लिया गया है और कल वही व्यक्ति कुछ काम से दूसरे क्षेत्र या गुच्छ में चला जाता है और उसे दूसरा साक्षात्कारकर्ता द्वारा पुनः साक्षात्कार लिया जाता है, जिससे प्रतिदर्श में तो मिथ्यापन आता ही है, साथ ही साथ उससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय नहीं होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्र प्रतिदर्शन एरिया सैम्पलिंग के कुछ दोष भी हैं। इन दोषों के बावजूद इस तरह के प्रतिदर्शन की उपयोगिता सर्वे शोध में काफ़ी अधिक बतलाई गई है। पैराग्राफ चेंज, कोटा प्रतिदर्शन, कोटा सैम्पलिंग। कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन की विधि है। यह ऊपर से देखने में अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन से काफ़ी मिलता जुलता है। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या को उसकी विशेषताओं के अनुकूल कई स्तरों में पहचान कर ली जाती है और इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक स्तर में अपनी आवश्यकता अनुसार या इच्छा अनुसार व्यक्तियों का चयन मनमाना ढंग से आर्बिट्रिली न कि यादृच्छिक ढंग से रैंडमली कर लेता है। पैराग्राफ चेंज, कर्लिंगर 1986 ने कोटा प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है। कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन है जिसमें जीव संख्या के अस्तरों जैसे यौन, प्रजाति, क्षेत्र और इसी तरह के अन्य अस्तरों के ज्ञान के आधार पर प्रतिदर्श की संख्याओं को चुना जाता है जो कुछ खास शोध उद्देश्यों के लिए प्रतिनिधिक, विशिष्ट एवं उपयुक्त होते हैं। अनकोट, कोटा प्रतिदर्शन की यह एक व्यापक एवं उपयुक्त परिभाषा है जिसका विश्लेषण करने पर हमें कोटा प्रतिदर्शन के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज, एक, कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन की विधि है। दो, इसमें जीव संख्या के स्तरों को उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचान ली जाती है। तीन, प्रत्येक स्तर से कुछ शोधों को शोधकर्ता यह समझकर चयन कर लेता है कि वे अवश्य ही जीव संख्या के संबंधित स्तर के प्रतिनिधि होंगे। पैराग्राफ चेंज, एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में मगध विश्वविद्यालय से कुछ छात्रों का चयन करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मगध विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हैं जिनमें से 8,000 छात्र स्नातक कक्षा के हैं तथा 2,000 स्नातकोत्तर कक्षा के हैं। अतः यहाँ छात्रों की जीव संख्या 10,000 है जो दो स्तर में बटे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शोधकर्ता 1,000 छात्रों का एक प्रतिदर्श तैयार करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वह 800 छात्रों को स्नातक कक्षा और 200 छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षा से लेगा ताकि चुने गए छात्रों का प्रतिदर्श का स्तर जीव संख्या के स्तर के समरूप हो, परंतु वह इन दो स्तरों से छात्रों का जो चयन करेगा वह यादृच्छिक ढंग से नहीं होगा बल्कि अपनी इच्छा अनुसार और सुविधा अनुसार छात्रों का चयन कर लेगा। जैसे शोधकर्ता गया, पटना और बिहार शरीफ में स्थित मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों से ही 1,000 छात्रों का चयन कर ले सकता है और अन्य स्थानों के कॉलेजों को छोड़ दे सकता है। पैराग्राफ चेंज, कोटा प्रतिदर्शन के कुछ लाभ तथा परिसीमाएँ हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, कोटा प्रतिदर्शन संभाविता तथा असंभाविता प्रतिदर्शन की अन्य विधियों से कम खर्चीला है। दो, कोटा प्रतिदर्शन को विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक पसंद किया जाता है जहां शोधकर्ता को एक स्थूल एवं तीव्र परिणाम चाहिए। तीन, कोटा प्रतिदर्शन में चूंकि जीव संख्या के प्रत्येक स्तर के लोगों को कुछ न कुछ संख्या में अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है, अतः इस तरह का प्रतिदर्श को एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहा माना जाता है और इसके परिणाम में बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। पैराग्राफ चेंज, इन लाभों के बावजूद कोटा प्रतिदर्शन के कुछ दोष या परिसीमाएं भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक कोटा प्रतिदर्शन में शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श में शामिल कर लेते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि शोधकर्ता अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को अक्सर सम्मिलित कर लेते हैं। आसानी से मिले ऐसे लोग कहाँ तक उस जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें करने का दावा किया जाता है, कहना मुश्किल है। दो, जब तैयार किया प्रतिदर्श जीव संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो कोटा प्रतिदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण उस जीव संख्या के लिए जिससे वह लिया गया था या अन्य समान जीव संख्या के लिए नहीं किया जा सकता है। तीन, कोटा प्रतिदर्शन में वर्गीकरण त्रुटि की संभावना काफ़ी अधिक होती है क्योंकि यहाँ शोधकर्ता व्यक्तियों का वर्गीकरण बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार करता है और इसके लिए वह कोई नियम आदि का अनुसरण नहीं करता है। चार, कोटा प्रतिदर्शन में शोधकर्ता की अपनी मनमानी इच्छा की प्रधानता होती है, फलस्वरूप वह जीव संख्या की विशेषताओं के बारे में अधिक नहीं जानता है और न जानने की कोशिश करता है। जैसे मन होता है वैसे ही वह प्रतिदर्शन संबंधी काम को करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बहुत सारे चरों को नियंत्रित नहीं कर पाता है जिसका प्रतिदर्शन के लिए सैद्धांतिक महत्व काफ़ी होता है। परिणामतः कोटा प्रतिदर्शन दोषपूर्ण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। इन परिसीमाओं के बावजूद कोटा प्रतिदर्शन का महत्व मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोधक में अधिक है क्योंकि इसमें सरलता तथा मितविविता जैसे गुण हैं। पैराग्राफ चेंज। शोध उपयोगिताएँ, रिसर्च यूटिलिटीज। कोटा प्रतिदर्शन की शोध उपयोगिताएं काफ़ी बतलाई गई हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान के शोधों में होता है। जब शोधकर्ता कम समय में ही अध्ययन करके जीव संख्या के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है जाना चाहता है तो इस विधि के समान प्रतिदर्शन की अन्य कोई विधि भी होगी ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। इसकी सबसे अधिक उपयोगिता उस परिस्थिति में देखी गई है जब जीव संख्या को कुछ विशेषताओं के आधार पर उसे कई स्तरों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक स्तर से व्यक्तियों का चयन भी आवश्यक होता है, परंतु शोधकर्ता के पास समय इतना नहीं होता है कि प्रत्येक स्तर से लोगों का चयन यादृच्छिक ढंग से कर सके। पैराग्राफ चेंज। प्रासंगिक प्रतिदर्शन, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग। प्रासंगिक प्रतिदर्शन एक ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन की विधि है जिसे सबसे अधिक स्थूल एवं अपक्व रूढ़ माना गया है। प्रतिदर्शन की यह विधि है जिसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सरलता एवं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं और इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि यह विधि काफ़ी हद तक कोटा प्रतिदर्श के समान है जहाँ सरलता एवं सुगमता की प्रबलता होती है। पैराग्राफ चेंज। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में बहुत सारे शोध ऐसे किए जाते हैं जिसमें शोधकर्ता स्कूल या कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को अपने प्रतिदर्श में इसलिए शामिल कर लेते हैं क्योंकि वे आसानी से एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। यह एक प्रासंगिक प्रतिदर्श का उदाहरण बनता है। प्रासंगिक प्रतिदर्शन के प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, प्रासंगिक प्रतिदर्शन में सुविधा का गुण मौजूद होता है। इसमें शोधकर्ता को प्रतिदर्शन काफ़ी आसानी से एक ही जगह मिल जाता है। दो, प्रासंगिक प्रतिदर्शन में समय, धन एवं परिश्रम की बचत होती है अतः इसमें मितविविधता का गुण मौजूद होता है। पैराग्राफ चेंज। प्रासंगिक प्रतिदर्शन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की कुछ परिसीमाएँ या दोष हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस तरह के प्रतिदर्शन के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनका सामान्यीकरण जीव संख्या के बारे में विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। दो, इस तरह के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता के पूर्वग्रह तथा पक्षपात आदि का खुलम खुला उपयोग किया होता है, इससे प्रतिदर्श की अविश्वसनीयता बढ़ जाती है। तीन, प्रासंगिक प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि अधिक होती है अतः इस तरह के प्रतिदर्शन की वैधता एवं विश्वसनीयता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। इन अवगुणों के बावजूद प्रासंगिक प्रतिदर्शन का प्रयोग मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोधों में उनके मितविविधता के गुण के कारण सर्वाधिक होता पाया गया है। पैराग्राफ चेंज, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन या निर्णायक प्रतिदर्शन, पर्पज सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन एक ऐसा असंभाव्यता प्रतिदर्शन विधि है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह यह समझता है कि वह जीव संख्या का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। गिलफोर्ड 1956 ने उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है, कोट, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि इसमें जीव संख्या के प्रतिनिधि होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है, अनकोट। इस तरह के प्रतिदर्शन को निर्णायक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शोधकर्ता उन सदस्यों को चुनने का निर्णय स्वयं करते हैं जो एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते समझे जाते हैं। पैराग्राफ चेंज, एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटर के प्रयोग का कार्य तुष्टि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। वह जानता है कि कंप्यूटर का प्रयोग होने से बैंक में कम व्यक्तियों की ज़रूरत होगी क्योंकि कंप्यूटर कई व्यक्तियों का काम अकेले कर लेता है। स्पष्टतः तब इसके प्रयोग से अस्थायी कर्मचारियों की छटनी होगी, अतः उन लोगों की कार्य संतुष्टि कम होगी। इसलिए वह इस अध्ययन में अस्थायी कर्मचारियों का ही एक प्रतिदर्श तैयार करेगा और उसी पर अध्ययन करेगा। यहाँ उसे यह विश्वास हो जाता है कि कुछ अस्थायी कर्मचारियों का समूह पूरे अस्थायी कर्मचारियों की जीव संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पैराग्राफ चेंज, शोध उपयोगिताएं, रिसर्च यूटिलिटीज़, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, पर्पसिव सैम्पलिंग की शोध उपयोगिताएं न केवल मनोवैज्ञानिक शोधों में ही बल्कि राजनीतिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के शोधों में भी बतलाई गई है। राजनीतिक उम्मीदवारों की सफलता के बारे में पूर्वानुमान लगाने में, वोटिंग व्यवहारों का अध्ययन करने में उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। मैकाइवर 1991 ने इस तरह के प्रतिदर्शन का सफलतापूर्वक निगम, कॉरपोरेशन एवं जिला परिषदों, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के प्रति लोगों का जनमत आंकने में सफलतापूर्वक किया है। पैराग्राफ चेंज, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन पर्पसिव सैम्पलिंग के कुछ लाभ, एडवांटेजेस एवं परिसीमाएँ, लिमिटेशंस भी हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में चूँकि यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है इसलिए इसमें कम खर्च आता है और साथ ही साथ शोधकर्ता के लिए आसानी से मिलने वाला एक प्रतिदर्श का यह उदाहरण बन पाता है। पैराग्राफ चेंज, दो, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में इस बात की गारंटी होती है कि इसमें उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो शोध डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। इस ढंग की गारंटी संभाव्यता तथा असंभाव्यता प्रतिदर्शन के किसी भी प्रकार में नहीं मिलता है। पैराग्राफ चेंज, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन की कुछ परिसीमाएं भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस तरह के प्रतिदर्श में प्रतिदर्श के प्रतिनिधि का होने का दावा का आधार शोधकर्ता का आत्मविश्वास होता है। आलोचकों का मत है कि यह विश्वास चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, चुना गया प्रतिदर्श जीव संख्या का सही सही प्रतिनिधित्व प्रायः नहीं कर सकता है। दो, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में चूंकि प्रतिदर्श जीव संख्या का प्रतिनिधित्व सही सही नहीं करता है इसलिए इससे प्राप्त निष्कर्ष का जीव संख्या के लिए सही सही सामान्यकरण संभव नहीं है। तीन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को जीव संख्या के बारे में काफ़ी विस्तृत एवं गहन जानकारी चाहिए जो हमेशा संभव नहीं हो पाती है। इस विस्तृत एवं गहन जानकारी के अभाव में शोधकर्ता द्वारा चुने गए प्रतिदर्श में अनेकों एवं तरह की त्रुटियां रह जाती हैं जिससे अध्ययन दोषपूर्ण रह जाता है। पैराग्राफ चेंज, चार, इस तरह के प्रतिदर्शन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अनुमानिक सांख्यिकी से नहीं की जा सकती है परंतु यह दोष सिर्फ उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन के लिए ही सही नहीं उतरता है बल्कि सभी तरह के असंभाव्यता प्रतिदर्शन पर सही उतरता है क्योंकि अनुमानिक सांख्यिकी के प्रयोग की एक पूर्व कल्पना यह होती है कि प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक ढंग से किया जा गया हो। इस ढंग का यादृच्छिकरण उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में नहीं हो पाता है अतः इससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अनुमानिक सांख्यिकी से संभव नहीं है। पैराग्राफ चेंज, इन अवगुणों के बावजूद उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन का प्रयोग सुगम एवं कम खर्चीला होने के कारण मनोवैज्ञानिक शोधों में काफ़ी किया जाता है। पैराग्राफ चेंज,